यूनिट एक पाठ तीन मानवीय अदा प्रक्रिया एवं प्रदा ह्यूमन एज इनपुट प्रोसेस एंड प्रोडक्ट प्रशिक्षण मनोविज्ञान संप्रेषण मनोविज्ञान एवं प्रणाली विश्लेषण इस पाठ के अंतर्गत है प्रबंधन तथा प्रशासन की अनेक प्रणालियों अथवा तंत्रों का विकास किया है परंतु मनुष्य द्वारा विकसित कोई प्रणाली पूर्ण नहीं है। प्रत्येक में सुधार एवं परिवर्तन की आवश्यकता है। प्रबंधन को कला तथा विज्ञान मानते हैं परंतु कला व विज्ञान की मध्यस्थता तकनीकी करती है इसलिए प्रबंधन तकनीकी का विकास हुआ है। इसी को अनुदेशात्मक प्रारूप की संज्ञा दी जाती है। प्रबंधन तकनीकी का मूल आधार अदा प्रदा तथा प्रक्रिया है। यह तीनों पक्ष समन्वित रूप में गतिशील रहते हैं और प्रबंधन प्रणाली में सुधार हेतु अनुभव जन्य आधार प्रदान करते हैं। यह सुधार तथा परिवर्तन की प्रक्रिया चक्रीय रूप में गतिशील रहती है। समय परिवर्तन के फल स्वरूप प्रणाली के उद्देश्य बदलते हैं इसलिए प्रबंधन के अदा प्रदा तथा प्रक्रिया पक्ष में परिवर्तन होता है। इस अध्याय में इन्हीं पक्षों से संबंधित आयामों का विवेचन किया गया है। प्रबंधन का विश्लेषण अपेक्षित उपलब्धियों या निष्पत्ति की दृष्टि से किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नांकित कार्य करने आवश्यक होते हैं। अ पाठ्य वस्तु की विशेषताओं का विश्लेषण करना होता है। ब छात्रों की अनुक्रियाओं की प्रकृति का विश्लेषण करना पड़ता है। इसमें उद्देश्यों तथा अधिगम के स्तरों को ध्यान में रखा जाता है। छात्रों के पूर्व ज्ञान तथा कौशलों को भी महत्व दिया जाता है। नवीन कार्यों के लिए उद्दीपन प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे अपेक्षित अनुक्रिया की जाती है। स शिक्षण विधि प्रविधि तथा शिक्षण सामग्री का चयन करना होता है तथा उनकी व्यवस्था करनी होती है। अभिप्रेरणा तथा पुनर्बलन की प्रविधियों का चुनाव करना पड़ता है जो छात्रों की क्षमताओं के विकास के लिए सहायक होते हैं। द अनुदेशन के प्रारूप का मूल्यांकन करना कि वह कहां तक छात्रों की क्षमताओं के विकास में सफल हो सका है। क्योंकि केवल सीखने के सिद्धांत पर आधारित शिक्षण द्वारा अपेक्षित उपलब्धि नहीं हो पा रही थी इसलिए सीखने के सिद्धांतों के अतिरिक्त शिक्षण की परिस्थितियों कार्यों के उपकरण तथा नए नए आयामों यानी कि अप्रोचेस को अधिक महत्व दिया गया है। इन्हीं सबके संपूर्ण रूप को अनुदेशन का प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की संख्या दी गई है। अनुदेशात्मक अभिकल्प की परिभाषा डेफिनेशन इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अनविन 1968 के अनुदेशन के प्रारूप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की निम्न परिभाषा दी है। अनुदेशन के प्रारूप से तात्पर्य आधुनिक कौशल तथा प्रविधियों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के लिए प्रयोग करना है। इसके अंतर्गत वह सभी विधि साधन वातावरण सम्मिलित किए जाते हैं जो अधिगम को सुगमता एवं सरलता प्रदान करते हैं। इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इज कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न स्किल एंड टेक्निक्स फॉर रिक्वायरमेंट्स ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग दिस इंक्लूड द फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग बाय मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया एंड मेथड एंड द कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंट इन सो फार एज दिस रिफ्लेक्ट ऑन लर्निंग अनविन। इस प्रकार की अनेक विचारधारणाएं सन 1950 के बाद आरंभ हुई। शिक्षा की व्यवस्था तथा प्रशिक्षण समस्याओं के प्रति अलग अलग आयामों का प्रयोग किया। इन विचारधाराओं को तीन रूपों में विभाजित किया है। पहला प्रशिक्षण मनोविज्ञान ट्रेनिंग साइकोलॉजी, दूसरा संप्रेषण मनोविज्ञान साइबरनेटिक साइकोलॉजी तथा तीसरा प्रणाली विश्लेषण सिस्टम एनालिसिस। अनुदेशन के यह तीनों आयाम यानी कि अप्रोचेस एक दूसरे के विरोधी नहीं है अपितु शिक्षा व्यवस्था तथा प्रशिक्षण की समस्याओं के समाधान की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। इन तीनों में घनिष्ठ संबंध है। अनुदेशात्मक अभिकल्प इंस्ट्रक्शनल डिजाइन इसे तीन स्तरों में बांटा गया है। पहला प्रशिक्षण मनोविज्ञान, दूसरा संप्रेषण मनोविज्ञान, तीसरा प्रणाली मनोविज्ञान। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में जो स्तर है वो अदा है यानी कि इनपुट, संप्रेषण मनोविज्ञान में जो स्तर है वो प्रक्रिया है यानी कि प्रोसेस, प्रणाली विश्लेषण में जो स्तर है वो प्रदा है यानी कि आउटपुट। उद्देश्य प्रशिक्षण मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है कार्य विश्लेषण का है, संप्रेषण मनोविज्ञान का जो उद्देश्य है वो पृष्ठ पोषण तथा पुनर्बलन का है, प्रणाली विश्लेषण का जो उद्देश्य है वो विकास प्रणाली से है। पहला प्रशिक्षण मनोविज्ञान यानी कि अदा पक्ष इनपुट। इस विचारधारा का आविर्भाव प्रशिक्षण की जटिल समस्याओं एवं परिस्थितियों पर किए गए शोध कार्यों से हुआ है। इसके अंतर्गत उन क्रियाओं को विशेष महत्व दिया जाता है जो छात्र सीखते समय करता है। इसमें शुद्धता पर अधिक बल दिया जाता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का उद्देश्य कार्य यानी कि टास्क की रूपरेखा तैयार करना, कार्य के अवयवों यानी कि टास्क एनालिसिस का विश्लेषण करना और उनके प्रकार व्यवस्थित करना है, जिससे अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। इस विचारधारा में कार्य विश्लेषण यानी कि टास्क एनालिसिस को प्रधानता दी जाती है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का अर्थ मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग साइकोलॉजी। प्रशिक्षण मनोविज्ञान शिक्षण अधिगम के लिए एक आयाम है, क्योंकि शिक्षण अधिगम की समस्याओं का समाधान अधिगम के सिद्धांतों से नहीं हो सकता। इनमें अधिगम नियमों तथा अधिगम परिस्थितियों पर ही ध्यान दिया जाता है। अधिगम एक आश्रित चर डिपेंडेंट वेरिएबल और शिक्षण की क्रियाएं स्वतंत्र यानी कि इनडिपेंडेंट वेरिएबल होती हैं। अतः शिक्षण के कार्यों में सुधार करने से अधिगम में विकास हो सकता है और शिक्षण अधिगम की समस्याओं का यही समाधान दिया जा सकता है। ट्रेनिंग साइकोलॉजी फोकसेस ऑन टास्क एनालिसिस एंड डिजाइन ऑफ इंटर रिलेटेड ट्रेनिंग कॉम्पोनेंट्स। प्रशिक्षण संस्थाओं में भी शिक्षा मनोविज्ञान में अधिगम सिद्धांतों पर अधिक बल दिया जाता है, फिर भी वे प्रभावशाली शिक्षक नहीं तैयार कर पा रही हैं। अतः इस विचारधारा का जन्म हुआ कि शिक्षण की कार्यों का विश्लेषण किया जाए, जिससे शिक्षण के कार्य अधिगम स्वरूपों को विकसित कर सकें। इस प्रकार प्रशिक्षण मनोविज्ञान यानी कि अदा इनपुट को प्रभावशाली बनाने के लिए कार्य विश्लेषण को महत्व देता है, जिससे प्रभावशाली शिक्षक तैयार किए जा सकते हैं। कार्य विश्लेषण के आधार पर व्यावहारिक उद्देश्यों का प्रतिपादन किया जाता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के अधिनियम प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रेनिंग साइकोलॉजी। जब सैन्य मनोविज्ञान उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत से प्रशिक्षण की जटिल समस्याओं के समाधान में सफल हो गए, तब उन्होंने प्रशिक्षण के पक्षों के विकास के लिए कार्य विश्लेषण आयाम का अनुसरण करना आरंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशिक्षण मनोविज्ञान का विकास हुआ। रॉबर्ट गेने ने प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांत की व्याख्या संक्षेप में इस प्रकार की है। पहला, किसी भी मानवीय कार्य का विश्लेषण उसके तत्वों में किया जा सकता है। ये तत्व एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। तात्विक कार्यों को संपादित करने के लिए अलग अलग युक्तियों की आवश्यकता होती है। दूसरा, यह तात्विक कार्य अंतिम कार्य के लिए मध्यस्थता का कार्य करते हैं। इनका संपादन स्थानांतरण में सहायक होता है। इनके अभाव में स्थानांतरण घटक घटकर शून्य हो जाता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के निम्न तीन मौलिक सिद्धांत माने जाते हैं। अ, अंतिम कार्य के परिचालन के तत्वों का विश्लेषण करना तथा उन्हें पहचानना। ब, यह ज्ञात करना कि प्रत्येक तात्विक कार्य का भली प्रकार संपादन किया जा सकता है। स, तात्विक कार्यों की एक ऐसे क्रम में व्यवस्था करना जो सीखने की समुचित परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। यह सभी कथन प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों का बोध कराते हैं। इन सिद्धांतों का व्यापक रूप से संबंध कार्य विश्लेषण से होता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान तथा अध्यापक शिक्षा की प्रतिमान ट्रेनिंग साइकोलॉजी एंड मॉडल ऑफ टीचर एजुकेशन। शिक्षकों की तैयारी का निर्धारण शिक्षण के कार्यों की प्रकृति से किया जाता है जो उन्हें कक्षा में करने पड़ते हैं। शिक्षण को प्रत्येक का विकास अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान पर आधारित होता है। सन 1960 के लगभग इस क्षेत्र में अधिक कार्य हुआ। अनेक अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों का विकास हुआ। यह सभी प्रतिमान प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित हैं। इन प्रतिमानों को तीन वर्गों में विभाजित किया गया है। बी ओ स्मिथ तथा क्लार्क ने शिक्षण कार्यों को तीन प्रकार का बतलाया है। उन्हीं कार्यों के आधार पर अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान भी तीन प्रकार के माने जाते हैं। अ, शिक्षक क्षमताओं के घटकों पर आधारित प्रेसेस फैक्टर प्रतिमान, पहला मिशिगन स्टेट प्रतिमान, दूसरा फ्लोरिडा प्रतिमान, तीसरा साइरस प्रतिमान, चौथा विस्कॉन्सिन प्रतिमान, इसको बोलते हैं द विस्कॉन्सिन मॉडल। ब प्रक्रिया क्षमताओं के घटकों पर आधारित प्रोसेस फैक्टर प्रतिमान, पहला शिक्षक महाविद्यालय प्रतिमान, दूसरा जॉर्जिया प्रतिमान, तीसरा क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रतिमान, चौथा टॉलिडो प्रतिमान। स उत्पादन क्षमताओं के घटकों पर आधारित प्रोडक्ट फैक्टर प्रतिमान, पहला वास्तविक संसार के लिए शिक्षक प्रतिमान, इसको इंग्लिश में टीचर्स फॉर द रियल वर्ल्ड मॉडल बोलते हैं, दूसरा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों क्षेत्रीय प्रयोगशाला प्रतिमान, द नॉर्थ वेस्ट रीजनल लेबोरेटरी मॉडल। अ इन तीनों प्रकार के कार्यों की प्रकृति भिन्न है। मिशिगन तथा विस्कॉन्सिन प्रतिमानों में शिक्षकों के प्रशिक्षण से ऐसे कार्यों को महत्व दिया जाता है जिससे उनकी आंतरिक क्षमताओं का विकास किया जा सके। इसके लिए शिक्षण की पाठ्य वस्तु पर स्वामित्व कराया जाता है और साथ ही साथ शिक्षण के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है। इन प्रतिमानों में शिक्षण के अदा पक्ष के विकास को महत्व दिया जाता है। भारत में इस प्रकार के प्रतिमान का उदाहरण क्षेत्रीय महाविद्यालय है। इन महाविद्यालयों में प्रशिक्षण के साथ विषय वस्तु का भी शिक्षण किया जाता है। प्रशिक्षण तथा स्नातक उपाधि 3 वर्ष बाद एक साथ ही प्रदान की जाती है, परंतु यह प्रतिमान अधिक सफल नहीं हुआ है। ब प्रक्रिया क्षमताओं के घटकों पर आधारित प्रतिमानों में शिक्षण के सिद्धांतों तथा कौशल के विकास पर ही बल दिया जाता है। इस प्रतिमान में शिक्षण के प्रक्रिया पक्ष के विकास को प्रधानता दी जाती है। जॉर्जिया तथा टॉलिडो प्रतिमान इसी के उदाहरण हैं। भारत में इस प्रकार के प्रतिमान 2 प्रकार के हैं, एक सेवा से पूर्व प्री सर्विस तथा सेवारत इन सर्विस। दोनों प्रकार के प्रशिक्षण महाविद्यालयों में शिक्षा के सिद्धांत, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण के कौशल के विकास को ही महत्व दिया जाता है। स उपलब्धि क्षमताओं के घटकों पर आधारित प्रतिमानों में शिक्षण के प्रदा आउटकम पक्ष के विकास को विशेष महत्व दिया जाता है, जिसके उदाहरण वास्तविक संसार के लिए शिक्षक प्रतिमान है। भारत में इस प्रकार के उदाहरण का अभाव है, परंतु इंटर्नशिप का आयोजन करने से उपलब्धि क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान तथा अनुदेशन, ट्रेनिंग साइकोलॉजी एंड इंस्ट्रक्शन। प्रशिक्षण मनोविज्ञान को अध्यापक शिक्षा प्रतिमानों के लिए नहीं किया जाता अपितु अनुदेशन में भी प्रयोग होता है। नॉर्मन ए क्राउडर ने शाखीय अभिक्रमित का विकास किया है। इसके अंतर्गत पाठ्य वस्तु का विश्लेषण किया जाता है, पाठ्य वस्तु को तत्वों में प्रस्तुत किया जाता है, कार्य की कठिनाइयों की भी पहचान की जाती है। यदि शिक्षार्थी को कार्य में कठिनाई का अनुभव हुआ तब उसकी कठिनाई के निदान के आधार पर सुधार तथा उपचार के लिए भी व्यवस्था की जाती है। साक्षीय अभिक्रमित अनुदेशन का आविर्भाव मानव प्रशिक्षण से हुआ है, किसी मनोविज्ञान के सिद्धांत से नहीं हुआ है। इसमें कार्य विश्लेषण को ही महत्व दिया जाता है। एक ही कार्य को छात्र अपनी अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संपादित करते हैं। इस अनुदेशन में प्रत्येक छात्र को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सीखने का अवसर दिया जाता है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ ट्रेनिंग साइकोलॉजी इन एजुकेशन। प्रशिक्षण मनोविज्ञान का विकास मानवीय प्रशिक्षण अधिगम की व्यावहारिक आवश्यकता के लिए हुआ है। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक शिक्षा में प्रशिक्षण की क्रियाएं ही की जाती हैं, जैसा उपयुक्त कथनों से स्पष्ट होता है कि अध्यापक शिक्षा में शिक्षण के नियोजन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान प्रत्येक विश्वविद्यालय में निजी विकसित किए गए हैं, जो प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर ही आधारित हैं। छात्र अध्यापक के कार्यों में कौशल के लिए प्रशिक्षण प्रतिमानों का भी विकास किया गया है। इसका प्रयोग प्रशिक्षण के उद्देश्यों के निर्धारण तथा प्रशिक्षण के कार्यों के तत्वों के विश्लेषण में भी किया जाता है। इस प्रकार प्रशिक्षण मनोविज्ञान का शैक्षिक कार्यक्रमों के विश्लेषण तथा शिक्षण प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए अधिक प्रयोग होता है। कार्य विश्लेषण के सिद्धांत पाठ्यक्रम के विकास के लिए ठोस आधार प्रदान करते हैं, अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली तथा उपयोगी बनाने में सहायक होते हैं तथा व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनुदेशन की रचना की जाती है। पाठ योजना की रचना में कार्य विश्लेषण से अधिक सरलता एवं सुगमता होती है। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा तथा प्रशिक्षण में उपयोग करने से एक नवीन शैक्षिक तकनीक का विकास हुआ है, जिसे अनुदेशन तकनीकी की संज्ञा दी जाती है। संप्रेषण मनोविज्ञान प्रक्रिया पक्ष, साइबरनेटिक्स साइकोलॉजी एज अ प्रोसेस। संप्रेषण मनोविज्ञान की विचारधारा का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। यह विचारधारा प्रशिक्षण मनोविज्ञान के अधिक समीप है, इसलिए इसे प्रशिक्षण मनोविज्ञान का ही एक अंग मानते हैं। इसके अंतर्गत मानव को एक अभियंत्रण के रूप में समझा जाता है। संप्रेषण मनोविज्ञान यानी कि साइबरनेटिक साइकोलॉजी का लक्ष्य पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक देना तथा स्वतः नियंत्रण करना है। यह विचारधारा व्यक्ति को एक पृष्ठ पोषण के रूप में फीडबैक सिस्टम मानती है, जो अपनी क्रियाओं को स्वतः उत्पन्न करता है और उनको प्रेरक तथा वातावरण से नियंत्रित करता है। इस मनोविज्ञान का संबंध व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करने तथा संचालित करने से होता है तथा गति उत्पन्न करता है। इस प्रकार पृष्ठ पोषण की प्रविधियां छात्रों के व्यवहार को नियंत्रित करके अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन में सहायक होती हैं। संप्रेषण मनोविज्ञान का अर्थ, मीनिंग ऑफ साइबरनेटिक्स। संप्रेषण मनोविज्ञान को संप्रेषण तथा नियंत्रण यानी कि कम्युनिकेशन एंड कंट्रोल का विज्ञान मानते हैं। गुलीबुड 1960 ने इस शब्द का अर्थ यूनानी काइबरनेटिक्स के लिए किया है। इसका अर्थ होता है शासन करना। इसे मशीन गन का सिद्धांत भी कहते हैं। इसका संबंध प्रमुख रूप से स्वतः निर्देशन अथवा स्वतः नियमीकरण से है। मानव व्यवहारों का नियमीकरण यानी कि रेगुलेशन पृष्ठ पोषण से होता है, जिसका प्रयोग ज्ञान उपलब्धि के रूप में किया जाता है। स्मिथ तथा स्मिथ 1966 ने प्रयोगात्मक अधिगम मनोविज्ञान का शिक्षण में प्रयोग करने का प्रयास किया था। मानवीय व्यवहार व्यवस्था के सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन संप्रेषण मनोविज्ञान से किया जाता है। डब्ल्यू वाइनर ने संप्रेषण मनोविज्ञान की परिभाषा की है कि वह मशीन एवं जीवों के नियंत्रण तथा संप्रेषण का विज्ञान है। साइबरनेटिक्स इज डिफाइंड बाय डब्ल्यू वाइनर एज द साइंस ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन इन द एनिमल एंड मशीन। संप्रेषण मनोविज्ञान के सिद्धांत, साइबरनेटिक्स थ्योरी। संप्रेषण मनोविज्ञान को एक प्रणाली यानी कि सिस्टम की संज्ञा दी जाती है। सभी प्रणालियों के तीन आधारभूत तत्व अदा, प्रक्रिया तथा प्रदा होते हैं। पहला अदा, इनपुट। इसके अंतर्गत इकाई के अंतर्गत वह सभी सूचनाएं तथा सामग्री सम्मिलित की जाती है जो प्रणाली की प्रक्रिया में प्रवेश के लिए आवश्यक है। दूसरा प्रक्रिया, प्रोसेस। इसके अंतर्गत इकाई में सूचनाओं तथा सामग्री पर सभी क्रियाएं इस प्रकार संपादित की जाती हैं जिससे उनमें अपेक्षित सुधार तथा परिवर्तन किया जा सके। तीसरा प्रदा, आउटपुट। इसके अंतर्गत इकाई में प्रक्रिया में परिणामों तथा उपलब्धियों को सम्मिलित किया जाता है जो उस प्रणाली की प्रक्रिया की देन होती है। यह विचारधारा छात्र को भी एक प्रणाली ही मानती है। छात्र के लिए यह तत्व इस प्रकार है, अदा, ज्ञान इंद्रियां, प्रक्रिया, प्रत्यक्षीकरण तथा प्रदा, स्मरण तत्वों को महत्व दिया जाता है। प्रणाली को साधारणतः दो भागों में विभाजित करते हैं, पहला मुक्त पास प्रणाली यानी कि ओपन लूप सिस्टम तथा दूसरा आवृत पास प्रणाली यानी कि क्लोज्ड लूप सिस्टम। मुक्त पास प्रणाली के अंतर्गत प्रदा यानी कि आउटपुट वापस लौट आता है और प्रणाली भावी प्रदा को प्रभावित करता है। आवृत पास प्रणाली को अक्सर संप्रेषण प्रणाली यानी कि साइबरनेटिक सिस्टम कहते हैं। आवृत पास प्रणाली तथा इसके वातावरण में अंतः प्रक्रिया होती है। इस प्रकार प्रणाली के अंतर्गत सीमांकन कर दिया जाता है। जब किसी प्रणाली का प्रदा अदा के रूप में लौटता है तब वह भावी प्रदा का नियंत्रण करता है, जिसे पृष्ठ पोषण यानी कि फीडबैक कहा जाता है। इस प्रकार संप्रेषण मनोविज्ञान ज्ञान इंद्रियों से नियंत्रित पृष्ठ पोषण के सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं द्वारा स्वयं नियंत्रित होता है। अनुदेशन एक संप्रेषण प्रणाली, इंस्ट्रक्शन एज अ साइबरनेटिक सिस्टम। अनुदेशन को भी एक संप्रेषण मनोविज्ञान प्रणाली समझा जा सकता है। अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत भी यह तीनों आधारभूत तत्व निहित होते हैं। पहला अदा, इस तत्व में छात्रों की विशेषताएं, निष्पत्ति क्षमताएं, भाषा की बोधगम्यता, शिक्षक का शिक्षण कौशल, पाठ्यवस्तु का स्वामित्व तथा उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। दूसरा प्रदा, इस तत्व में उपलब्ध ज्ञान राशि का परिणाम होता है जो छात्र अपनी अनुक्रियाओं के आलेख से तैयार करते हैं। तीसरा प्रक्रिया, प्रोसेस। इन तत्वों में प्रस्तुतिकरण का नियंत्रण तथा सुधार किया जाता है। छात्रों की अनुक्रियाएं पृष्ठपोषण का कार्य करती हैं तथा नवीन ज्ञान प्रदान करती हैं। अनुदेशन की संप्रेषण प्रणाली के अंतर्गत आदा प्रदा तथा प्रक्रिया क्रम का अनुसरण किया जाता है। अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत आवृत्त पास प्रणाली क्लोज्ड लूप सिस्टम को ही महत्व दिया जाता है। इसमें प्रदा तत्व अदा के रूप में लौट कर आता है और अदा भावी प्रदा को नियंत्रित करता है। अनुदेशन के एक पद को पढ़कर छात्र अनुक्रिया करता है जिससे वह नवीन ज्ञान सीखता है जिसे प्रदा कहते हैं। अपनी अनुक्रिया की शुद्धता से छात्र को पुनर्बलन मिलता है जिसे पृष्ठ पोषण भी कहते हैं। इस प्रकार यह अनुक्रिया यानी कि प्रदा भावी अनुक्रियाओं को प्रेरित करती है। अनुक्रिया की पुष्टि भावी अपेक्षित अनुक्रिया की संभावना बढ़ा देती है। इस प्रकार भावी अनुक्रिया यानी कि प्रदा इस प्रक्रिया से नियंत्रित होती है। अभिक्रमित अनुदेशन के अंतर्गत इन्हीं तत्वों का अनुसरण किया जाता है। अदा तथा प्रदा के मध्य अनुदेशन की आव्यूह यानी कि स्ट्रेटेजी कार्य करती है। शिक्षक का महत्वपूर्ण कार्य यह है कि उसे पृष्ठ पोषण की प्रविधियों का क्रमबद्ध रूप में प्रयोग करना चाहिए। संप्रेषण मनोविज्ञान का शिक्षा में प्रयोग इम्प्लीकेशन ऑफ साइबरनेटिक्स एजुकेशन। संप्रेषण मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांतों तथा प्रत्ययों को शिक्षण अधिगम के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। आदिकाल से कक्षा शिक्षण में व्यक्तिगत भिन्नता की गंभीर समस्या रही है। इसके सिद्धांतों तथा प्रत्ययों के प्रयोग से ऐसे अनुदेशन की रचना की जाती है जिसमें सभी छात्रों को अपने ढंग से सीखने का अवसर प्रदान किया जा सकता है। छात्रों को अध्ययन के समय लगातार पृष्ठ पोषण प्रदान किया जाता है जिससे वह एकाग्रचित होकर अनुक्रियाएं करता है। संप्रेषण मनोविज्ञान के आयाम से शिक्षक अधिगम के नियंत्रण की प्रविधियों को समझ सकता है, उनका कक्षा शिक्षण व अनुदेशन में प्रयोग कर सकता है तथा शिक्षण के स्वरूपों की व्यवस्था प्रभावशाली ढंग से करने में सफल हो सकता है। संप्रेषण मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण प्रत्यय पृष्ठ पोषण माना जाता है। इसके प्रयोग से छात्रों के अधिगम का नियंत्रण तो किया ही जाता है अपितु छात्र अध्यापकों में शिक्षण कौशल का विकास भी किया जा सकता है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग तथा अनुकरणशील शिक्षण यानी कि स्टिमुलेटेड टीचिंग की सहायता से पृष्ठ पोषण की प्रविधियों का प्रयोग करके छात्र अध्यापकों में अपेक्षित शिक्षण कौशल का विकास किया जा सकता है। इस प्रकार पृष्ठ पोषण की प्रविधियों के प्रयोग से प्रशिक्षण संस्थाएं प्रभावशाली शिक्षक तैयार कर सकती हैं। पृष्ठ पोषण प्रत्यय मानव विकास का महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। इसका प्रयोग समाज परिवार तथा विद्यालयों में किया जाता है। अदा प्रदा तथा प्रक्रिया के सिद्धांत शिक्षण की क्रियाओं का वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण करने की क्षमता का विकास करते हैं। कक्षा शिक्षण तथा अनुदेशन विद्यालय के कार्यक्रमों की गतिशील प्रक्रिया मानी जाती है। शिक्षण क्रिया को अनेक घटक प्रभावित करते हैं, अतः शिक्षक को अपने अनुदेशन तथा शिक्षण परिस्थिति की व्यवस्था में समस्त महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखना चाहिए। यह सिद्धांत भी संप्रेषण मनोविज्ञान की ही देन है। इसे जुड़ाव का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिवनेस कहते हैं। इसके आधार पर शिक्षण प्रतिमानों का निर्माण भी किया जा सकता है। प्रणाली विश्लेषण यानी कि प्रदापक सिस्टम एनालिसिस आउटपुट। प्रबंध तकनीकी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। इस तकनीकी ने प्रबंध संबंधी निर्णय लेने व्यापार उद्योग शासन तथा सेना को अधिक प्रभावित किया है। इस तकनीक को कई नामों से संबोधित किया जाता है परंतु यह प्रणाली विश्लेषण यानी कि सिस्टम एनालिसिस के नाम से अधिक विख्यात है। अनुदेशन प्रारूप यानी कि इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की यह तीसरी विचारधारा है जिसे प्रणाली विश्लेषण कहते हैं। इसका प्रशिक्षण मनोविज्ञान से घनिष्ठ संबंध है। इसे शिक्षा प्रबंधन को वैज्ञानिक आधार दिया गया है। प्रणाली विश्लेषण की प्रक्रिया प्रोसीजर ऑफ सिस्टम एनालिसिस। प्रोसीजर ऑफ सिस्टम एनालिसिस को आलेख के द्वारा दर्शाया गया है। यह निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करता है। पहला आरंभ के बाद विश्लेषण, विश्लेषण के बाद प्रारूप, प्रारूप उद्देश्य और प्रणाली पूर्ण में विभाजित है। प्रणाली पूर्व का संबंध विश्लेषण से किया गया है और इसी का संबंध क्रिया से भी किया गया है। क्रिया का संबंध निरीक्षण से किया गया है और निरीक्षण का संबंध प्रणाली पूर्ण से किया गया है और इस प्रणाली पूर्ण का संबंध उसके बाद विश्लेषण से कर दिया गया है। प्रणाली विश्लेषण का अर्थ मीनिंग ऑफ सिस्टम एनालिसिस प्रणाली शब्द का तात्पर्य यह विश्लेषण तथा विकास से है। इस प्रत्यय की धारणा है कि प्रत्येक मानव व्यवहार संगठित प्रणाली के अंग के रूप में कार्य करता है और कोई प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं है, इसलिए विश्लेषण द्वारा उसकी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और प्रणाली को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इस आयाम के द्वारा शैक्षिक प्रशासन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। इसके अंतर्गत परिणामात्मक विश्लेषण किया जाता है जो प्रशासक को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। प्रणाली प्रत्यय अभियंत्रण के क्षेत्र से लिया गया है। अभियंता का कार्य किसी प्रणाली के अंतर्गत सभी पक्षों का निरीक्षण करके सुधार करना है। इस प्रकार एक प्रणाली के तात्पर्य उसके समस्त स्वतंत्र तथा आश्रित चरों से है जो अपेक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होते हैं। प्रणाली विश्लेषण मौलिक रूप में गणित पर आधारित है। द सिस्टम एनालिसिस इन्वॉल्व यूटिलाइजेशन ऑफ साइंटिफिक मैथमेटिकल टेक्निक्स अप्लाइड टू ऑर्गेनाइजेशनल ऑपरेशंस एज अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज। शैक्षिक प्रशासन के क्षेत्र में प्रणाली विश्लेषण प्रशासक की समस्याओं के संबंध में निर्णय लेने के लिए वैज्ञानिक परिणामात्मक आधार प्रदान करती है। प्रणाली विश्लेषण से तात्पर्य है कि यह समस्त प्रणाली के विश्लेषण के लिए अनुसंधान के लिए परिणामात्मक वैज्ञानिक प्रविधि उपलब्ध है। यह प्रत्येक किसी व्यवस्था के सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यावहारिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। प्रणाली विश्लेषण से व्यवस्था प्रबंध के दोषों का अध्ययन किया जाता है और निदान के आधार पर ही व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। प्रथम सोपान उद्देश्यों का प्रतिपादन करना। प्रणाली विश्लेषण का यह कार्य सबसे अधिक कठिन समझा जाता है। इसके अंतर्गत विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। व्यय के अतिरिक्त क्रियाओं तथा जनशक्ति का आलेख तैयार किया जाता है। द्वितीय सोपान प्रणाली की संपादित क्रियाओं का अवलोकन करना। इस सोपान में व्यवस्था की सभी क्रियाओं का व्यापक रूप में अवलोकन समस्या के चयन के लिए किया जाता है। इसके लिए व्यवस्था की क्रियाओं की भली प्रकार जानकारी होनी चाहिए। तृतीय सोपान प्रदत्तों का संकलन करना। समस्या को पहचानने के बाद उसके संबंध में प्रदत्तों का संकलन किया जाता है। प्रदत्तों के आधार पर समस्या की पुष्टि की जाती है। इसके लिए सांख्यिकी प्रविधियों को प्रयुक्त किया जाता है। चतुर्थ सोपान प्रदत्तों का विश्लेषण करना। समस्या की पुष्टि के लिए प्रदत्तों का विश्लेषण किया जाता है। इसके लिए सांख्यिकी प्रविधियां प्रयोग में लाई जाती हैं। प्रशासक जिस समस्या की अनुभूति करता है वह सही नहीं होती है, इसलिए प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर समस्या के संबंध में निर्णय लिया जाता है। पंचम सोपान समस्या को पहचानना। प्रशासक समस्या के विशिष्ट रूप को नहीं पहचानता है, इसलिए व्यवस्था का अवलोकन प्रदत्तों का संकलन तथा विश्लेषण किया जाता है। प्रदत्तों के विश्लेषण के आधार पर समस्या के विशिष्ट रूप को पहचाना जाता है तथा समस्या की परिभाषा दी जाती है। छठम सोपान समस्या के क्षेत्र की व्यवस्था करना। समस्या के चयन के बाद यह आवश्यक होता है कि उसका व्यापक रूप से अध्ययन किया जाए। अधिक व्यापक रूप से अध्ययन करने से व्यवस्था के स्वरूप की वास्तविक कठिनाइयों के संबंध में जानकारी हो जाती है। सप्तम सोपान रूपरेखा ब्लॉक डायग्राम समस्या के क्षेत्र का निर्धारण प्रणाली विश्लेषण का अंतिम सोपान माना जाता है, क्योंकि समस्या समाधान हेतु व्यवस्था के लिए नई रूपरेखा तैयार की जाती है। व्यवस्था का यह स्वरूप पूर्व प्रतिमानों पर आधारित होता है। पहला प्रारूप डिजाइन प्रणाली विश्लेषण के बाद समस्या के समाधान के लिए नए प्रारूप को प्रयुक्त किया जाता है। इस नए प्रारूप का मूल्यांकन किया जाता है कि वह कहां तक समस्या के समाधान में सफल हो सका है। इसमें पुनः सुधार करके प्रयुक्त किया जाता है जिससे समस्या का पूर्ण समाधान हो सके। दूसरा मूल्यांकन इवैल्यूएशन नवीन प्रारूप का परीक्षण लघु स्तर पर किया जाता है, तत्पश्चात उसे विशाल स्तर पर प्रयुक्त किया जाता है। इसके मूल्यांकन के लिए साक्षियां एकत्रित की जाती हैं। इस प्रत्यय को एक उदाहरण से अधिक स्पष्ट समझ सकते हैं। मेरठ विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति प्रशासक ने तत्कालिक उच्च शिक्षा की समस्या की अनुभूति की थी। वह समस्या के विशिष्ट रूप को पहचानने में भी समर्थ हो सके। परीक्षा प्रणाली दोषपूर्ण थी, इसके लिए उन्होंने सत्र प्रणाली के नवीन प्रारूप को लागू किया था। सत्र प्रणाली का प्रारूप अधिकांश समस्याओं का समाधान करने में सफल रहा, परंतु पूर्ण समाधान नहीं दे सका। इस प्रारूप में पूर्ण रूप में प्रणाली विश्लेषण का अनुसरण नहीं किया गया था। तीसरा मानदंड क्राइटेरिया इसको निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जाता है। पहला कार्यकुशलता किसी प्रणाली के मूल्यांकन में कार्यकुशलता का एक महत्वपूर्ण मानदंड माना जाता है। कार्यकुशलता व्यवस्था के स्तर की परिचायक होती है। व्यवस्था के द्वारा कार्यकुशलता का मापन किया जाता है। दूसरा, कार्यकुशलता प्रणाली विश्लेषण में वे एक महत्वपूर्ण मानदंड कम व्यय पर अधिक उत्पादन किया जा सके ऐसे प्रारूपों को उत्तम माना जाता है। व्यय की गई गणना की जाती है। तीसरा, उपयोगिता अंतिम मानदंड प्रारूप की उपयोगिता होती है। नया प्रारूप अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी होना चाहिए। चौथा, समय किसी व्यवस्था के प्रारूपों में उपयोगी होने के साथ समय भी कम लगना चाहिए तभी उसे प्रभावशाली माना जा सकता है। किसी की व्यवस्था के लिए शक्ति समय तथा महत्वपूर्ण व्यय होते हैं। इसमें बचत होना प्रारूप की प्रभावशीलता का सूचक होता है। कम समय में अधिक उत्पादन होने पर ही नए प्रारूपों को प्रभावशाली समझा जा सकता है। अनुदेशनात्मक प्रारूप उपयोग का उदाहरण, एग्जाम्पल फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। शिक्षा की अपनी प्रणाली है, उसका प्रबंधन है। शिक्षा की अनेक उप प्रणालियां हैं। यदि शिक्षा प्रणाली की कोई समस्या है तब उसके समाधान एवं सुधार हेतु अनुदेशनात्मक अभिकल्प का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। नकल की प्रवृत्ति को कैसे रोका जाए, परीक्षा शिक्षा की उप प्रणाली है। परीक्षा में नकल की प्रवृत्ति का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाए जिससे कारणों की जानकारी हो सके। परीक्षा प्रश्नों का विश्लेषण करने पर विदित हुआ कि परीक्षा प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जिनके उत्तर पुस्तकों गाइड तथा संभावित प्रश्नों की पुस्तिकाओं में मिल जाते हैं। छात्र उनकी सुगमता से नकल कर लेते हैं। इस विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि परीक्षा प्रश्नों का स्वरूप नकल की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है। इसके निराकरण के लिए संभावित समाधान ज्ञान करना होगा। जैसे, पहला, परीक्षा के प्रश्नों का स्वरूप ऐसा हो जिनका उत्तर पुस्तकों गाइडों आदि में न मिल सके। दूसरा, परीक्षा के प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ा दिया जाए और परीक्षा में पुस्तकों की भी अनुमति दी जाए। इन विकल्पों में द्वितीय विकल्प अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है, इसलिए किसी विद्यालय में इसका प्रयोग किया जाए। परीक्षा प्रश्नों का कठिनाई स्तर बढ़ा दिया जाए, उन्हें स्मृति स्तर तक सीमित न रखा जाए तथा छात्रों से यह कह दिया जाए कि तुम्हें परीक्षा में पुस्तकें ले जाने की अनुमति होगी। गत वर्षों में प्रयोग किया भी गया परंतु सफल नहीं हुआ। प्रथम विकल्प अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली सिद्ध हुआ, अतः अब परीक्षा प्रश्नों के स्वरूप में परिवर्तन किया जाने लगा है। परीक्षा के प्रश्न पत्रों में वस्तुनिष्ठ सूक्ष्म उत्तर तथा निबंधनात्मक प्रश्नों को सम्मिलित किया जाने लगा है। इस अभिकल्प में समस्या का समाधान वैज्ञानिक ढंग से किया जाता है। प्रणाली विश्लेषण का शिक्षा में उपयोग, एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम एनालिसिस इन एजुकेशन। प्रणाली विश्लेषण के प्रत्यय तथा सिद्धांतों ने व्यवस्था, शासन, व्यापार, उद्योग, कारखानों तथा सेना को अधिक प्रभावित किया है। इसका शिक्षा प्रणाली में भी अधिक प्रयोग किया जा सकता है। शैक्षिक प्रशासन, शैक्षिक व्यवस्था तथा शैक्षिक अनुदेशन को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। शिक्षा एक प्रणाली है, इसके अंतर्गत अनेक उप प्रणालियां सम्मिलित हैं। भारत में शिक्षा प्रणाली के संबंध में कई आयोग तथा समितियां बैठाई जाती रही हैं। वे अपने सुझाव देती रही हैं, परंतु शिक्षा प्रणाली को सार्थक, उपयोगी तथा प्रभावशाली बनाने में सफल नहीं हो सकी। शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन तथा सुधार भी होते रहे हैं तथा नए प्रारूपों को प्रयुक्त भी किया गया है, फिर भी शिक्षा की समस्याओं का समाधान संभव नहीं हो सका है। इसका मूल कारण यह रहा है कि समस्या के विशिष्ट रूप को पहचानने का सही रूप में प्रयास नहीं किया गया है। शिक्षा शास्त्रियों, महान पुरुषों तथा प्रशासकों ने जैसा कि अनुभव किया अथवा सोचा कि उसी के अनुसार शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन कर दिया और नए प्रणाली प्रारूप को लागू कर दिया। समस्या का विशिष्ट रूप उन्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए प्रारूप से मूल्यांकन तक के लिए संदर्भ बिंदु ही उपलब्ध नहीं है। अतः स्पष्ट है कि शैक्षिक व्यवस्था, शैक्षिक प्रशासन तथा शैक्षिक अनुदेशन की समस्याओं के समाधान के लिए प्रणाली विश्लेषण के सोपान ही पूर्ण समाधान निकाल सकते हैं, जो कि हमारी शिक्षा प्रणाली के लिए अधिक उपयोगी हो सकता है और जिसमें समय, शक्ति तथा धन कम व्यय होगा, क्योंकि यह प्रयत्न समस्या समाधान के लिए परिमाणात्मक वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता लेता है। प्रणाली विश्लेषण का प्रयोग शिक्षा के अधोलिखित क्षेत्रों में किया जा सकता है। पहला, नवीन शैक्षिक प्रशासन के प्रतिमान के निर्माण में। दूसरा, शैक्षिक व्यवस्था के प्रारूप के निर्माण में। तीसरा, परीक्षा प्रणाली के प्रारूप के निर्माण में। चौथा, निर्देशन प्रणाली के प्रतिमान के निर्माण में। पांचवा, अध्यापक शिक्षा के प्रतिमान के निर्माण में। छठवा, अनुदेशन निर्देशनात्मक प्रारूप इंस्ट्रक्शनल डिजाइन को एक तालिका के द्वारा दर्शाया गया है। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, संप्रेषण मनोविज्ञान और प्रणाली विश्लेषण में। प्रशिक्षण मनोविज्ञान के अंतर्गत पहला है प्रवर्तक एल कॉर्टर रॉबर्ट गेने। साइबरनेटिक्स में इसमें पहला है गुलीबोर्ड स्मिथ तथा स्मिथ। प्रणाली विश्लेषण में पहला है बैंक घाट तथा केनिथ ग्लेशर। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में दूसरा आविर्भाव के मूल स्रोत सैन्य प्रशिक्षण। संप्रेषण मनोविज्ञान में पहला है मशीन के सिद्धांत। प्रणाली विश्लेषण में दूसरा है अभियंत्रण। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में तीसरा है लक्ष्य कार्य विश्लेषण। संप्रेषण मनोविज्ञान में तीसरा पृष्ठ पोषण का नियंत्रण एवं नियमीकरण और प्रणाली विश्लेषण में तीसरा है व्यवस्था का विकास। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में चौथा है अवधारणाएं। इसमें क्षमता के विकास के लिए कार्य कुशलता का महत्वपूर्ण योगदान है। संप्रेषण मनोविज्ञान में चौथा है व्यक्ति एवं मशीन के समान है, उसके विकास में पृष्ठ पोषण महत्वपूर्ण कार्य करता है। प्रणाली विश्लेषण में चौथा है व्यवस्था का विकास विश्लेषण से ही किया जा सकता है, कोई भी प्रणाली अपने में पूर्ण नहीं है। पांचवा प्रशिक्षण मनोविज्ञान में पहला सिद्धांत मानवीय कार्यों का विश्लेषण तत्वों में किया जा सकता है। दूसरा तात्विक कार्य अंतिम कार्य की मध्यस्थता। संप्रेषण मनोविज्ञान में पांचवा है अदा, दूसरा प्रदा, तीसरा प्रक्रिया। प्रणाली विश्लेषण में पांचवा है पहला प्रणाली विश्लेषण विकास के लिए होती है, दूसरा विश्लेषण में करते हैं वैज्ञानिक प्रविधियां प्रयुक्त की जाती हैं। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में छठवा है सोपान। इसमें पहला है लक्ष्य के रूप में, दूसरा कार्य विश्लेषण, तीसरा कार्य तत्वों का संपादन, चौथा कार्य क्षमता। संप्रेषण मनोविज्ञान में पहला है उद्दीपन वातावरण, दूसरा अनुक्रिया नवीन ज्ञान के रूप में, तीसरा पुनर्बलन अनुक्रिया की पुष्टि के रूप में। प्रणाली विश्लेषण में छठा है आवश्यकता, दूसरा उद्देश्य, तीसरा प्रदत्तियों का संकलन तथा विश्लेषण, चौथा समस्या का विशिष्टीकरण, पांचवा नया प्रारूप, छठवा मूल्यांकन। प्रशिक्षण मनोविज्ञान में सातवां है शिक्षा के प्रयोग। इसमें पहला है अनुदेशन की रचना में, दूसरा पाठ योजना में, तीसरा अध्यापक शिक्षा के प्रतिमानों के निर्माण में, चौथा शिक्षण कौशलों के विकास में, पांचवा अनुदेशन तकनीक के विकास में, छठवां साखीय अनुदेशन में। संप्रेषण मनोविज्ञान में सातवां है इसमें पहला कक्षा शिक्षण में, दूसरा अनुदेशन के निर्माण में, तीसरा अभिक्रमित अधिगम रेखीय अनुदेशन में, चौथा शिक्षण प्रतिमान अनुबंध अनुक्रिया शिक्षण प्रतिमान में, पांचवा मानवीय व्यवहार परिवर्तन में घर परिवर्तन तथा विद्यालयों में, छठवां अध्यापकों के व्यवहार के विकास तथा सुधार के लिए प्रशिक्षण महाविद्यालयों में। प्रणाली विश्लेषण में सातवां है पहला शैक्षिक प्रशासन के प्रतिमान में, दूसरा शैक्षिक व्यवस्था प्रारूप में, तीसरा परीक्षा प्रणाली के सुधार में, चौथा निर्देशन के प्रारूप में, पांचवा अध्यापक शिक्षा प्रतिमानों के सुधार तथा विकास में, छठवां अनुदेशन प्रणाली के सुधार तथा प्रारूप में। ये तालिका कंप्लीट हुई। प्राणायाम आयाम का प्रथम अध्ययन अध्याय में किया गया है। अधिगम अभ्यास लर्निंग एक्सरसाइज। अनुदेशन के प्रारूप से क्या समझते हैं, इसके कार्यों का उल्लेख करते हुए शैक्षिक तकनीकी से संबंध स्थापित कीजिए। दूसरा प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रत्यय की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा में इस प्रत्यय में प्रयोग का वर्णन कीजिए। तीसरा संप्रेषण मनोविज्ञान के अर्थ तथा सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए और इनका प्रयोग शिक्षा के किन क्षेत्रों में किया जा सकता है विस्तार से समझाइए। चौथा प्रणाली विश्लेषण का अर्थ व सोपानों की व्याख्या कीजिए तथा शिक्षा के विभिन्न स्रोत क्षेत्रों में इस आयाम की उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। पांचवा प्रशिक्षण मनोविज्ञान संप्रेषण मनोविज्ञान तथा प्रणाली विश्लेषण की तुलना अधोलिखित पक्षों में कीजिए। उद्देश्य अवधारणाएं सिद्धांतों सोपानों तथा शिक्षा में उपयोग। छठवां अनुदेशन तकनीकी तथा अनुदेशन के प्रारूप की परिभाषा कीजिए तथा उनका आपस में अंतर स्पष्ट कीजिए। शिक्षण तकनीकी का ज्ञान किस प्रकार शिक्षक के लिए लाभप्रद हो सकता है। सातवां अनुदेशन प्रारूपों का परिचय संक्षेप में दीजिए। नौवां अनुदेशनात्मक प्रारूप का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए तथा उनकी विशेषताओं एवं आयामों का वर्णन कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। पहला प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। दूसरा प्रबंधन की प्रमुख प्रक्रियाओं को गिनाइए। तीसरा अनुदेशनात्मक प्रारूप का अर्थ एवं परिभाषा दीजिए। चौथा अनुदेशनात्मक प्रारूप की प्रक्रियाओं को बताइए। पांचवा प्रशिक्षण मनोविज्ञान का अर्थ समझाइए। छठवा प्रणाली विश्लेषण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। सातवां संप्रेषण मनोविज्ञान का अर्थ बताइए। सत्य असत्य प्रश्न ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन। पहला, प्रबंधन एक एवं प्रणाली विश्लेषण में अंतर नहीं है, सत्य या असत्य। दूसरा, नियोजन, संगठन तथा पर्यवेक्षण प्रबंधन की क्रियाएं हैं, सत्य या असत्य। तीसरा, अनुदेशनात्मक प्रारूप का उपयोग प्रशासन में अधिक किया जाता है, सत्य या असत्य। चौथा, प्रशिक्षण मनोविज्ञान तथा संप्रेषण मनोविज्ञान अनुदेशनात्मक अभिकल्प की प्रक्रियाएं हैं, सत्य या असत्य। पांचवा, पृष्ठपोषण प्रशिक्षण मनोविज्ञान की प्रविधि है, सत्य या असत्य। छठवां, प्रशिक्षण प्रतिमान प्रशिक्षण मनोविज्ञान की देन है, सत्य या असत्य। सातवां, संप्रेषण मनोविज्ञान पृष्ठपोषण सिद्धांतों पर आधारित है, सत्य या असत्य। कुंजी, पहले के लिए असत्य, दूसरे के लिए सत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए सत्य, पांचवें के लिए सत्य, छठवें के लिए सत्य और सातवें के लिए भी सत्य। रिक्त स्थान की पूर्ति। पहला, प्रबंधन की प्रक्रियाओं का लक्ष्य मानव का रिक्त स्थान करना है। दूसरा, नियोजन तथा संगठन रिक्त स्थान की प्रक्रियाएं हैं। तीसरा, पृष्ठपोषण प्रविधि का उपयोग रिक्त स्थान मनोविज्ञान में किया जाता है। चौथा, प्रशिक्षण प्रतिमानों का विकास रिक्त स्थान मनोविज्ञान में किया जाता है। पांचवा, प्रणाली विश्लेषण का उपयोग रिक्त स्थान में किया जाता है। छठवां, प्रशिक्षण मनोविज्ञान का संबंध रिक्त स्थान से होता है। सातवां, संप्रेषण मनोविज्ञान रिक्त स्थान के सिद्धांत पर आधारित है। कुंजी, इसमें पहले के लिए विकास, दूसरे के लिए प्रबंधन, तीसरे के लिए संप्रेषण, चौथे के लिए प्रशिक्षण, पांचवें के लिए प्रशासन, छठवें के लिए अदा, सातवें के लिए पृष्ठपोषण। बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला, प्रबंधन के मुख्य लक्ष्य हैं अ, नियंत्रण, ब, विकास, स, पर्यवेक्षण, द, उपरोक्त सभी। दूसरा, अनुदेशनात्मक प्रारूप की मुख्य प्रकरण है अ, प्रणाली विश्लेषण, ब, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, स, संप्रेषण मनोविज्ञान, द, उपरोक्त सभी। तीसरा, पृष्ठपोषण के सिद्धांतों पर आधारित है अ, संप्रेषण मनोविज्ञान, ब, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, स, प्रणाली विश्लेषण, द, उपरोक्त सभी। चौथा, प्रशिक्षण प्रतिमानों का विकास किया अ, प्रणाली विश्लेषण, ब, संप्रेषण मनोविज्ञान, स, प्रशिक्षण मनोविज्ञान, द, उपरोक्त सभी। पांचवा, प्रबंधन का मुख्य लक्ष्य होता है अ, व्यवस्था करना, ब, प्रशासन करना, स, नियोजन करना, द, उपरोक्त सभी। छठा, प्रबंधन की प्रकृति है अ, कला, ब, विज्ञान, स, दोनों ही, द, कोई नहीं। सातवां, प्रशिक्षण प्रतिमान का घटक होता है अ, योग्यता, ब, प्रक्रिया, स, उत्पादन, द, उपरोक्त सभी। आठवां, संप्रेषण मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है अ, अदा तत्व, ब, प्रदा तत्व, स, प्रक्रिया तत्व, द, उपरोक्त सभी। कुंजी, पहले के लिए द, दूसरे के लिए द, तीसरे के लिए अ, चौथे के लिए स, पांचवें के लिए द, छठवें के लिए स, सातवें के लिए द, आठवें के लिए भी द।